Father, we just come to you, Lord. We come to you because you are our Father. You taught us, O Lord, to call you Father. Today we come to our Father. Today we come to the Shepherd of our souls. And we pray, Lord, teach us, feed us. For the end of faith is the salvation of our soul. That's what your word says. We have not come here how to take care of our body. We have come here that you may minister to our soul. Speak to us. Teach us this morning how to be prepared. Whether you come today or you would come 10 years from now, how we walk in preparation, that day may be the greatest day in our life, the most exciting day in our life, because we were prepared. Teach us, speak to us, give us understanding, let our faith increase above all. We surrender our will and we confess and we speak. Let thy will be done in our lives. Teri ichha, Prabhu, hamare jeevan mein. Hamare ichha nahi, teri ichha puri ho hamare jeevan mein. Thank you, Father. Thank you, Lord. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah, as brothers come, no? If you keep moving to the empty seats, the others can come and
sit. अगर कुछ लोग यहाँ के बैठ जाएंगे तो तब जो लास्ट में लोग आएंगे वो लोग पीछे जाके बैठ सकते हैं.
Okay. If we have to prepare, अगर हम तैयारी करना है तो संसार से आंख उठाकर परमेश्वर की वजन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हमारे नजर डालना है. How do we keep our eyes on Jesus?
हम अपने नजरों को यीशु पे कैसे टिकाए
रखें? Scripture says,
वचन कहती है,
I'll give you two scriptures.
मैं आपको दो पद दूंगा.
Hebrews 12 and verse 2.
इब्रानियों का 12 का 2.
And Hebrews 3 and verse 1.
और बाद में हम लोग पढ़ेंगे.
There are plenty of verses. I'm just giving you two.
बहुत सारे अलग-अलग वचन हैं, लेकिन मैं दो देता हूँ.
Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते
रहें. यीशु के ओर ताकते रहे, यीशु के ओर. और हेब्राई के 3:1 में लिखा है फिर,
सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट के,
स्वर्गीय बुलावट, हमारे बुलावट इस संसार से नहीं, पृथ्वी से नहीं, हमारे बुलावट कहां से है? स्वर्गीय बुलावट है. हाँ, पढ़ लीजिए.
स्वर्गीय बुलावट में भागी हो,
भागी हो
उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं.
यीशु पर ध्यान करो, यीशु पर ध्यान करो. दोनों वचन में लिखा है यीशु पर ध्यान करो, लेकिन हम यीशु पर कैसे ध्यान करेंगे? वचन में लिखा है यूहन्ना की 1:1, सबको मालूम है, फिर भी पढ़ेंगे. 1:1, आदि में क्या था?
आदि में वचन था,
और वचन
परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर,
वचन परमेश्वरी था. हम कैसे यीशु पर ध्यान रखेंगे? वचन पर ध्यान रखें. आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वरी वजन था. हम कैसे यीशु के भी इस संसार में चलते, ये आंख में चलते, ये रूप में चलते समय में हम यीशु पर कैसे ध्यान रखेंगे? उसकी वजन के ऊपर ध्यान रख. वी कीप अवर आईज ऑन द वर्ड. That is the only way.
हम लोग परमेश्वर के वचन पे ही ध्यान रख के ही यही रास्ता है,
क्योंकि उसकी वचनी है परमेश्वर, उसकी वचनी है सत्य. कल ने आपका जो कल था हमने देखा, हम 5 बात देखा. क्या है? 1, परमेश्वर सत्य है, पुत्र यीशु सत्य, यीशु बोला मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य. हमने देखा आत्मा सत्य है, और चारवा में हमने देखा उसकी वजन सत्य है और पांचों हमने देखा उसकी कलीसिया क्या है, सत्य का खंबा है। ये पांच सत्य, इसमें तीन तो हम नहीं देख सकते, पिता पुत्र परमेश्वर को ये आंख से नहीं देख सकता, लेकिन वजन देख सकता, कलीसिया देख सकता। ये कलीसिया वजन के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में सत्य की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हमने बोला हमारे सबसे बड़ा समस्या किसके साथ है, सत्य के साथ है। परमेश्वर कल भी बोला परमेश्वर की प्रेम एक समुद्र के समान है, लेकिन समुद्र की भी सीमा है, सीमा के बाहर समुद्र नहीं जाते। परमेश्वर की प्रेम का भी एक सीमा है, वो सीमा क्या है, सत्य है। सत्य के बाहर परमेश्वर की प्रेम नहीं जाते, इसलिए हम क्या खोजना पड़ेगा, सत्य खोजना पड़ेगा। हम जब सत्य में चलते हैं, आई कैन एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड,
तभी मैं परमेश्वर का प्रेम का अनुभव कर पाऊंगा।
एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। कल हमने देखा यूहन्ना में ऐसे लिखा है, यीशु परमेश्वर मार्था मरियम और लाजरस को तीनों को प्रेम किया, लेकिन जब वो बेदनी में मार्था के घर में आया, सिर्फ मेरी मरियम यीशु के पैर में बैठकर वचन सुन रहा था, और यीशु मार्था से बोला तुम बहुत बहुत बातों में घबरा गए हो, लेकिन एक बात उचित है, जो वो बात मेरी ने चुन लिया है वो मेरे पैर में बैठकर वजन सुन रहे। सबको प्रेम करते, मैं कुन कुन जगह में कहां कहां कलीसिया में अलग अलग देश में जाते टाइम में सबको प्रेम करते, लेकिन मेरा आंख भी इधर जाते है, कहां है, कौन है वजन सुनने के लिए बैठते रोज। वो तीन दिन का मीटिंग है, अब सिक्किम में 6-8 दिन का मीटिंग था, भूटान में 5 दिन का मीटिंग है, इसके बाद नेपाल जा रहे, उधर 5 दिन का मीटिंग में कहां है, सबको प्रेम करता, लेकिन प्रेम से काम नहीं चलता। जो वचन के लिए पहले आकर बैठते हैं हर दिन वचन सुनने के लिए, क्योंकि काम सत्य से चलते, विश्वास से चलते हैं। विश्वास कहां से आते हैं, सुनाई से, सुनाई से, और सुनाई परमेश्वर के वचन से। जब एक व्यक्ति विश्वास में चलते और उसकी जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आते, बाकी लोग सोचे हाँ परमेश्वर क्या है, उसको प्रेम करते मुझे प्रेम नहीं करते, प्रभु बोला नहीं, वचन में क्या लिखा है, मैं मार्था को, मेरी को, लाजरस को, तीनों को प्रेम किया, एक ही परिवार के तीन लोग है, लेकिन एक ही व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर की वजन मानने के लिए। हम जहां देख लो मरियम के बारे में ऐसा लिखा है, यीशु कहां कहां गया, मरियम यीशु के साथ, जोआना के साथ और दूसरे स्त्रियों के साथ अपने पैसे उठाकर यीशु को सेवा कर चला। मार्था ने क्या किया, जब यीशु अपने घर में आते हैं सेवा करते और घबराते, लेकिन जहां जहां यीशु जाता है, जो विश्वास में बैठा, जो विश्वास में वजन सुन लिया, वह वो यीशु कहां जाते हैं, यीशु का सेवा कर जाते हैं। हमें किसके लिए बुलाया है, हम सब, मैं भी कलीसिया में बोल रहे, अगर मैं किसी को घर में आएगा तो मेरा सेवा सब करेगा, अरे पास्टर बाबू आ गया, लेकिन वो सेवा तो सब करेगा, लेकिन मेरे जैसा होना पड़ेगा, विश्वास के सुनकर यीशु कहां जा रहे हैं, हम भी यीशु के साथ जाकर यीशु का सेवा करना है। वो कहां से सीखेगा, उसके पैर में बैठकर विश्वास में उसके वचन सुनते सुनते, जीसस विल लीड अस,
उसके चरणों में जब बैठेंगे यीशु मसीह आपका अगुवाई
करेंगे। और वचन में ऐसे लिखा है, यीशु के अंत के 6 दिन 7 दिन के आगे वो फिर बेदनी में आए, सब चेलों के साथ बेदनी में आए, पहली बार हमने सुन पाएगा उधर। अब लाजरस भी वजन सुनने के लिए बैठा हुआ है, पहले कभी भी हम नहीं देखेगा लाजरस वजन सुनने के लिए। अब मरा 4 दिन कहां था, कब्रिस्तान में था, उसके पास जी उठा, अभी वजन सुनने के लिए बैठ रहे। बहुत सारे लोगों को जीवन ऐसे समस्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वजन सुनेगा, नहीं तो कितने बार जीसस अपने घर में आएगा तो वजन नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग को जीवन में इतना क्लेश आना पड़ेगा, इतना संकट आना पड़ेगा, उसके बाद उसकी खान खोलेगा, नहीं तो खान खोलेगा। ये आदमी इतना कठोर था, यीशु कितनी बार उसके घर में आया, पहली बार वजन में लिखा है वजन सुनने के लिए यीशु के साथ बैठा हुआ है। लेकिन उधर मार्था कहां है, वो समय भी किचन में काम कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन वजन में ऐसे लिखा है, मेरी ने उठकर, हमको मालूम है ना, शी टुक दैट ऑयल, द अनॉइंटिंग ऑयल,
अभिषेक वाला तेल को लेती है
और यीशु को अभिषेक किया। जब उसने यीशु को अभिषेक किया, जो दास था उसके चेलाओं था उनसे बोल रहे, क्यों ये बेकार में वेस्ट कर रहे, वो बेचकर गरीब को दे सकते हैं। यीशु ने बोला, रुक, जो जिस काम उस कर रहे हैं मेरे मृत्यु के लिए मुझे वो तैयार कर। देखो, चेला लोग 3.5 साल यीशु के साथ चला। ये घर में यीशु बार बार आया, बहुत सारे लोग उसके भाषण सुना, लेकिन एक ही स्त्री आत्मा से सुना, इसका मृत्यु का समय आ गया, मेरे पुत्र को तैयार करो। कारण क्या है? पैर में बैठकर सुनने के लिए उसने सीखा। उसकी बात वजन में लिखा है, जब यीशु क्रूस में है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वजन में लिखा है यीशु के मां मरियम, ओ मग्दलीना मरियम मदरा। तो मां तो आएगा, अपने बच्चे को प्रॉब्लम है तो समस्या है तो मां आ जाएगा, लेकिन ये स्त्री भी क्रूस की पासी है। उसकी बात लिखा है, जब जोसेफ अरिमथिया का जोसेफ और निकोडेमस आकर, यीशु मर चुका है, उसके देह लेकर चल रहे, एक खाली कब्रिस्तान में एक जगह मिल गया, उन लोग उधर लेकर यीशु का शरीर रखने के लिए जा रहा है और यीशु का शरीर लग रहा, वजन पढ़ लो, वजन में लिखा है मग्दला मरियम देख रहे मेरा यीशु का शरीर कहां रखा है, एक चेला भी नहीं है, एक चेला भी नहीं। मरियम जब यीशु जिंदा था, यीशु मर रहा था, यीशु मरने के बाद भी उसकी सेवा किया, और वजन में लिखा है जब यीशु जी उठा सुबह, कौन था उधर पहले? मग्दला मरियम था। यीशु बोला, अगले जगह में भी बोला, इधर बोला तो याद नहीं है, यीशु का मुख्य तीन काम था, एक ये संसार में पाप के लिए मरना, दूसरा पाताल में नरक में जाकर उधर भी इसका एक काम था, वजन में लिखा है पत्रस की चिट्ठी में लिखा है, और स्वर्ग में अंत काम था, उसके लहू लेकर अति पवित्र स्थान में उसके लहू लगाना है, उसके बाद ही उद्धार की काम खत्म होगा। वजन में ऐसा लिखा है, जब वो जी उठा और स्वर्ग जाने के लिए तैयार होते टाइम में पत्रस आकर गया, योहनान आकर गया, मरियम नहीं गया। तो काम पूरा नहीं हुआ, उद्धार के सबसे बड़े, ये संसार के सबसे बड़े काम खत्म नहीं हुआ, अभी जाना है। लेकिन मरियम को दुख देकर यीशु ने अपने आप मरियम को दिखाया। कारण क्या? एक साधारण स्त्री का विश्वास देख। परमेश्वर बड़े लोगों को, जिसका दौलत है, जिसका शिक्षा है, नहीं खोज रहे, साधारण लोग को। तुम्हारे मन में विश्वास है, तुम्हारे मन में असल प्रेम है, तो परमेश्वर अपने आप प्रकट करेंगे। पत्रोस को नहीं प्रकट किया, योहनान को नहीं प्रकट किया, उन लोग आकर देखकर चली गई, खाली है, उसका कपड़ा भी देखा फिर भी चली गई। इन लोग की साथी था 3.5 साल, सब बताया, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, सब देखकर खाली देखकर उन लोग वापस गया, मरियम नहीं गया, मरियम नहीं गया। इसलिए हम ये बोल रहे, यू वांट गॉड टू रिवील हिमसेल्फ टू यू,
आप चाहते हैं परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करें।
ही इज रिवील थ्रू द वर्ड,
वचन के द्वारा ही वो अपने आप।
लर्न टू सिट एट हिज फीट,
उनके पैरों के पास बैठना सीखिए,
एंड लर्न टू डिपेंड अपॉन द होली स्पिरिट,
और सीखिए कैसे पवित्र आत्मा पे निर्भर हुए।
आई कैनॉट लर्न ऑन माई ओन,
मैं अपने आप से नहीं सीख सकता।
वचन में लिखा है, पहले योहन्ना के 16:13 में लिखा है, पवित्र आत्मे के बारे में लिखा, क्या लिखा है उधर? John 16:13, John 16:13।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा,
सत्य के आत्मा आएगा, वो क्या करेगा?
तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
हाँ, सत्य का मार्ग बताएगा। मैं बोला, हमारे समस्या किसके साथ है? सत्य के साथ है। सत्य तो बहुत पसंद नहीं है। यीशु इधर है सत्य में, मैं तो इधर है सत्य में। तो जब परमेश्वर अपना सत्य दिखा रहे, क्या अब ये यीशु समझो, ये सत्य है। सत्य के देखते टाइम मैं क्या मानना पड़ेगा? अब सत्य है, मेरा जीवन तो झूठा है, मेरा जीवन झूठा है मानने के लिए पर लोगों को बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, इस सत्य की पार कर ही जीवन मिलेगा। एंड वचन में लिखेगा जो आत्मा आएगा वो आत्मा क्या है, सत्य की आत्मा है। हमें कहां लेकर जाएगा, सत्य के। वो उसके बारे में नहीं बोलेगा, अपने बारे में नहीं बोलेगा, सिर्फ यीशु के बारे में बोलेगा। यीशु है सत्य, आत्मा भी सत्य है, लेकिन आत्मा यीशु के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं बोलेगा। जब यीशु आया, यीशु अपने बारे में नहीं बोला, पिता के बारे में बोला। जब आत्मा आएगा, आत्मा अपने बारे में नहीं बोलेगा, यीशु के बारे में। जो हम कलीसिया है, कलीसिया अपने बारे में नहीं बोलेगा, किसके बारे में बोलेगा, यीशु के बारे में बोलेगा। अपने गवाही मत बोलना, हमारे गवाही किसकी गवाही होना पड़ेगा, परमेश्वर का गवाही होना पड़ेगा। अपने गवाही नहीं बोलना, यीशु अपने गवाही नहीं बोला, परमेश्वर का गवाही बोला। जब आत्मा आया अपने गवाही नहीं बोल रहे, अरे मेरे सामर्थ्य से सारे सृष्टि हुई नहीं बोला। वो सच्चे वचन में लिखा है उत्पत्ति के 1:3 में आत्मा ने काम किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं आत्मा, सब क्या लिखा है, वचन के द्वारा सब हुआ लिखा है। किसके बारे में बोल रहे हैं, यीशु के बारे में। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीस थिंग्स।
हमें ये चीजों के विषय में बहुत
लीड अस इनटू ट्रूथ,
हमें सच्चाई में अगुवाई,
ही विल लीड अस इनटू ट्रूथ। आत्मा ही हमें सिखा सकते, बट इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ,
लेकिन अगर मैं सच्चाई में मैं कोई रुचि नहीं पाता हूं,
देन गॉड कैन नॉट टीच मी,
परमेश्वर मुझे सिखा नहीं सकता।
कल हमने देखा ना प्रोवर्ब्स 23:23, सच्चाई का प्रॉब्लम क्या है, क्या है सच्चाई का समस्या,
सच्चाई को
मोल, सच्चाई को क्या करना पड़ेगा,
मोल,
मोलना पड़ेगा। क्या है, खरीदना पड़ेगा, नुकसान है। जब यीशु मसीह जेरिको में आया और जकेस से बोला नीचे आओ तुम्हारे घर में मैं आ रहा हूं, यीशु जकेस के घर में गया, बहुत अमीर आदमी, उधर के टैक्स कलेक्टर है, और जब इसके घर में आया आत्मा का सामर्थ्य यीशु के साथ, उसकी जीवन ने मन फिराया, उसने उठकर क्या बोला, जो जो व्यक्ति से पैसा छीन ली है कितना गुना भर के वापस देंगे, 4 गुना। नुकसान हो गया सत्य मानने के लिए, और मेरी आधी संपत्ति बेचकर गरीब, और उसे संपत्ति खत्म हो गया, क्यों, ये मानने के लिए, सत्य खरीदने के लिए, सत्य खरीदने के लिए। इट्स नॉट इजी, हम वी कंफ्यूज ट्रूथ विथ नॉलेज।
हम लोग बहुत बार सत्य और ज्ञान को हम लोग नहीं समझ पाते, एक को दूसरे के लिए हम लोग ले लेते हैं।
सत्य ज्ञान नहीं है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर सत्य है। वो सत्य खरीदने के लिए मूल चुकाना पड़ेगा, मूल चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। अगर मूल चुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो परमेश्वर मुझे सिखाया, ये भाषण इतने साल से वजन सिखा रहे, बाहर विदेश देशों से इंडिया तक बहुत सारे पासवान लोग ये सत्य सब सुनकर उन लोग का मालूम पड़ गया, किस तरीके से हमने कलीसिया बनाया वो सच्चाई में नहीं था, सांसारिक तरीके से था। बहुत सारे पासवान क्या किया, उसने तरीका सच्चाई के अनुसार बदल दिया, और क्या हो गया, जिसके कलीसिया में 5,000 लोग था, 10,000 लोग था, अभी 500 लोग ही है बाकी। कारण, लोग को क्या पसंद नहीं है, सच्चाई पसंद नहीं है। यीशु का मिनिस्ट्री में भी वही हुआ, हजारों लोग था, लेकिन अंत में कितने लोग बाकी था, सिर्फ 11। कारण क्या, शिक्षा के कारण, चमत्कार के काम के कारण नहीं। सबको खाना खिलाया, सबको चंगाई दिया, सबको छुटकारा दिया, सबको खाना भी दिया फ्री, लेकिन आपको भी आज खाना फ्री मिलेगा, लेकिन ये वजन, मेरा वजन नहीं, परमेश्वर का वजन नहीं मानेगा तो आप भी चली जाएगा। वजन में ऐसे लिखा है, योहना के 6 में क्या लिखा है, यीशु के शिक्षा के कारण।
इस पर उसके चेले में से बहुत सारे उल्टे फिर गए।
भीड़ तो चली गई, भीड़ कहां गई, चली गई। अभी कौन चल गए, चले जा रहे
चेले
भी, चल चेले भी चली गई, बाकी कितना है, 11-12 लोग है। यीशु उनसे पूछ रहे 67 अगला पद,
तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो,
तुम भी चले जाना चाहते हो। उन लोग क्या चले जा रहे, आपको खाना नहीं पसंद होकर चले जा रहे, नहीं, आपको छुटकारा मुझे पसंद नहीं हो चले जा रहे, आपका चंगाई मुझको पसंद नहीं है उनसे चले जा रहे, नहीं। कारण उसका शिक्षा, शिक्षा के कारण 60 देखा 60 दिखाओ क्यों लोग चले जा रहे हैं।
इसलिए उसके चेले में से बहुत ने सुनकर यह कहा कि यह बात नागवर है, इसे कौन सुन सकता
है। I don't know why they use such a difficult word. ये बात कठिन है, आपकी बात आपकी शिक्षा बहुत कठिन है, आपके शिक्षा बहुत कठिन है। कौन बोल रहे ये? चेला बोल रहे, चेला बोल रहे, भीड़ नहीं, ये भीड़ नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे है? चेला बोल रहे, चेला बोल रहे। आपकी भीड़, आपकी शिक्षा बहुत कठिन है। हम वो शिक्षा, आत्मा जो शिक्षा वो सत्य हमें दिखाते टाइम में क्या होते, हमको नहीं पसंद होते। जब सामुएल साउल राजा के पास आकर बोला, तुमने आज्ञा नहीं पाला पालन किया, साउल क्या बोल रहे, मैंने आज्ञा पालन किया। नहीं तुम्हें आगे पालन नहीं, नहीं मैं आगे पालन किया। आगे पालन किया? हाँ पालन किया। उसने बोला लेकिन बकरी का आवाज तो आते हैं, बकरी बाकी सबको मारा, अच्छा थोड़ा को बाकी रखा और राजा को भी बाकी रखा, और वो सोच रहे मैंने आगे पालन किया। परमेश्वर आकर पर 10 सवाल है, 9 हमने रखा, 1 तो पालन नहीं किया। हम 9 में देखेगा, परमेश्वर 1 में देखेगा। हम 9 देखकर बोलेगा मैंने पालन किया, परमेश्वर 1 में देखकर बोलेगा तुम पालन नहीं किया। देख ले वो सत्य देखते टाइम में, दिखाते टाइम में हम क्या करेंगे। वही बोलेगा जब पवित्र आत्मा, हमने दंड देने के लिए नहीं, ये दंड की बात नहीं। Jesus did not come to condemn.
यीशु मसीह नहीं आए दोषी ठहराने।
He came to save.
बचाने के लिए।
लेकिन सत्य के बाहर परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता। सत्य के बाहर परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता, because God is true.
क्योंकि परमेश्वर खुद सत्य है।
परमेश्वर, इसलिए हम वजन की शिक्षा के लिए आ रहा हूं। क्यों? वजन में क्या है? सिर्फ ज्ञान नहीं, पर उसने क्या बोला 67, यीशु ने क्या बोला, तुम
विली ऑल
चले जाने जाते हो। पत्रोस ने क्या उत्तर दिया? नेक्स्ट वर्ड्स क्या बोला ये पत्रोस ने? हम
शमा पत्रोस ने उससे उत्तर दिया कि
हे प्रभु किसके पास
जीवन की बातें तो तेरे की बात।
हाँ ये बात क्या है? आनंद जीवन की बात है। संसार में एक दूसरा जीवन है, वो जीवन का बात नहीं। यीशु कौन जीवन की बात बोल रहे है? आनंद जीवन की बात है। वो कहां से आते हैं? सुनाई से। सुना यीशु का वचन सुनना पड़ेगा, यीशु का वचन मानना पड़ेगा। सुनाई से, सिर्फ सुनाई से नहीं, वो वचन हमने सुना वो पालन करना पड़ेगा। वचन में बोलेगा आज्ञा पाली होना पड़ेगा। एक यीशु एक दिन बेतसैदा गया, या डोंट गेट कंफ्यूज दिस थिंग, ओके। यीशु एक दिन बेतसैदा गया, उतना बड़े तरीके से बहुत सारे लंगड़े लोग बैठा हुए, बहुत 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 बीमारी लोग, लंगड़ा सब बैठा हुआ। यीशु सबसे जाकर पूछ रहे, क्या पूछा हमको मालूम नहीं, लेकिन वजन से मालूम पड़ेगा। सबसे पूछ रहे, सोच रहे, तुम कितने साल था इधर, तुम कितने साल था। एक ने बोला मैं कितने साल था? 38 साल था। सबसे ज्यादा वही है 38 साल। सोच लो, एक चंगाई के लिए 38 साल से उधर बैठा हुआ है, क्योंकि वजन में ऐसे लिखा है साल में एक बार स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएगा, जो पहले जाएगा उसको चंगाई मिलेगा, सिर्फ एक व्यक्ति को। फिर भी वो कितने साल से चंगाई के लिए है? 38 साल। यीशु उससे पूछ रहे, डू यू वांट टू गेट वेल,
क्या तुम भला चंगा होना चाहते हो?
अरे सोच लो कितना कैसे सवाल है, कितने साल से बैठा हुआ है?
38 साल।
डू यू वांट टू गेट वेल, डू यू वांट टू बी मेड होल,
क्या तुम चंगा होना चाहते हो?
बहुत सारे लोग चंगा होना नहीं चाहते। अगर चंगाई हो जाएगा तो जीवन में जिम्मेदारी भी है। You have responsibilities.
आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी आ जाएगी।
जिम्मेदारी आ जाएगा। People don't want to take responsibilities.
लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते।
They don't want to be made whole.
वो लोग सच में संपूर्ण नहीं होना चाहते.
यीशु उससे बोला, Do you want to get well?
यीशु ने उससे कहा, तुम क्या चंगा होना चाहते हो?
उसने बहुत सारे बात बोले, कोई मुझे मदद. यीशु बोला, नहीं, तुमसे पूछे तुम्हें अगर चंगाई चाहिए या नहीं. अगर चाहिए तो पिक अप योर मैट एंड वॉक.
अपना बिस्तर उठाओ और चलो.
चलो, उसने क्या किया? अपने बिस्तर, चंगाई हो गया, बिस्तर उठाया, चल रहे. वो कौन सा दिन है? शब्द के दिन. जो लोग हैं व्यवस्था के लोग, पूरा उसका चंगाई नहीं देख रहे. इतने साल से बैठा हुआ लोग है, व्यक्ति है, अभी उठकर चल रहे. सिर्फ नहीं चल रहे, अपने बिस्तर भी उठाया. उन लोग खुशी नहीं है. बोल रहे, तुमने व्यवस्था तोड़ दिया, क्यों सब्त का दिन काम कर रहे? कौन बोला तुम्हें ये उठाने के लिए? उसने बोला, जिसने चंगाई दी उसने बोला. तुमने इतने साल से चंगाई तो नहीं दिया ना. तुम व्यवस्था से चलकर चंगाई नहीं मिला, अनुग्रह से जो आया मुझे चंगाई दी. उसको नाम भी मालूम नहीं था ये यीशु ने, उसने चंगाई दी वो भी मालूम नहीं था. और वचन में ऐसा लिखा है, वचन में क्या लिखा है, उसने क्या किया? यीशु ने चंगाई दिया और उसने सीधा कहां गया? मंदिर गया. चंगाई पाने के बाद हम कहां जाना है? परमेश्वर के घर में जाना है. चंगाई एक बात है, छुटकारा एक बात है, उद्धार दूसरी बात है. चंगाई परमेश्वर से जितने लोगों को मिला, सबको उद्धार नहीं मिला है. उद्धार कहीं कहां मिलते हैं? कलीसिया में मिलते हैं. उसने मंदिर में आया और वचन में लिखा है, उसको मंदिर में देखकर यीशु आकर उससे दूसरा एक बात बोला. वो उद्धार की बात है, वो चंगाई की बात नहीं, वो उद्धार की बात है. वचन में क्या लिखा? यीशु ने बोला, पाप मत करना. क्या मत करना?
पाप मत करना.
अगर तुम पाप करेगा तो इससे ज्यादा होगा तुम्हारा असर. 38 साल बैठा, इससे ज्यादा होगा,
इससे ज्यादा बुरा
होगा, बुरा होगा योर कंडीशन,
तुम्हारा अवस्था इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा. लेट्स
लुक एट जॉन 5:24.
यूहन्ना का 5:24 पढ़िए, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है.
हम डोंट रीड जस्ट वन वर्स,
बस एक पद कभी मत पढ़िए.
यीशु ये सुधार के बारे में क्यों इधर बोल रहे? एक व्यक्ति ने उसकी वो बातें सुने, आज्ञा पालन करा, चंगाई पाई, मंदिर गई, और परमेश्वर बोल रहे वो है उद्धार. योर फेथ हैज टू हैव ओबीडियंस.
आपका विश्वास में आज्ञाकारिता होना आवश्यक है,
नॉट जस्ट लिसनिंग,
बस सुनना नहीं.
इफ यू डोंट ओबे,
क्योंकि अगर आज्ञाकारी नहीं बनेंगे,
योर फेथ हैज नो मीनिंग.
आपका विश्वास कोई अर्थ ही नहीं.
फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग,
विश्वास सुनने से आता है,
एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड,
सुनने मसीह के वचन,
और सुनने के बाद वो सुने बात मानना पड़ेगा. अगर नहीं माने तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं आते. क्या होते ईसाई लोगों को सारे संसार में? वचन सुनते लेकिन विश्वास के वो काम नहीं करते. यीशु ने इसने बोला, 38 साल से उठो, बिस्तर उठाओ और चलो. उसने वो विश्वास की काम किया. विश्वास की एक काम है. जब तक हम विश्वास की वो काम नहीं करते, हमारा विश्वास पूरा नहीं होते. वी हियर,
हम लोग सुनते तो हैं,
अच्छी बात है, अच्छी बात है. वी हैव टू हियर,
हमें सुनना जरूरी है.
वी हैव टू राइट इट डाउन,
हमें लिखना जरूरी है.
बट द पावर इज इन द ओबीडियंस,
लेकिन सामर्थ्य आज्ञाकारिता में आता है.
पावर इज इन द ओबीडियंस, दैट इज व्हाट जीसस इज ऑलवेज कमिंग बैक टू.
बार बार इशू यही बात पे लौट रहे हैं.
इफ यू डोंट ओबे,
अगर आज्ञा नहीं मानेंगे,
इफ यू डोंट ओबे,
अगर आज्ञा नहीं मानेंगे,
इट विल नॉट वर्क,
हमारे लिए काम नहीं होगा.
In Matthew 7, we looked at it yesterday, but we have to come back to it. Matthew 7, 13 और 14 में यीशु दो मार्ग के बारे में लिखा है. दो मार्ग है इस संसार में, दो मार्ग है.
सकीर फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो जो विनाश को पहुंचता है,
विनाश में जाने वाला एक रास्ता है वो तो हाईवे, एक ही टाइम में 7 गाड़ी जा सकते हाईवे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में चलने वाला मार्ग अलग है। क्या लिखा है उधर अगला पद?
क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को,
वो जीवन तक पहुंचाएगा। दैट रास्ता बहुत
सकरा
है, सकरा है, बहुत कठोर है, वेरी नैरो, वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। जब परमेश्वर ने बोला ये रास्ता बहुत मुश्किल है, हम जैसे पासवान वो आसान नहीं बना सकते, परमेश्वर के वजन के विरुद्ध में भाषण नहीं दे सकते। उसने बोला, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला, ये मेरा वजन नहीं है, उसका वचन है। उसने बोला द गेट इज वेरी वेरी स्ट्रेट, सकरा है, द वे इज वेरी नैरो,
और जो रास्ता है बहुत ही सकरा है,
सकरा है वो, लेकिन वो रास्ता कहां जाते हैं?
जीवन की ओर।
दूसरा रास्ता कहां जाते हैं? नरक की ओर। और वो जो उसके बाद क्या लिखे है, वो दूसरे रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, इस रास्ते में क्या लिखा है, बहुत कम है, बहुत कम है। And what is the difference between these two crowds?
ये दोनों भीड़ के बीच में क्या अंतर है?
अंतर है, जो लोग ये भीड़ के अंदर है, ये दोनों रास्ते में लोग हैं, वो लोग का अंतर क्या है? यीशु बोल रहे हैं 21 में, ये अध्याय 21 में बोलते हैं, 7:21।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा,
ना करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय, हम स्वर्गीय पिता के इच्छा में चलना पड़ेगा, फिर वो रास्ते में। स्वर्गीय इच्छा, परमेश्वर की इच्छा कैसे सीखते हैं? वचन से सीखते हैं, विश्वास से सुनते हैं, और आज्ञा पालन होकर वो छोटी रास्ते में चलते हैं। वी गो इन दैट स्मॉल नैरो
पाथ में चल पाएंगे।
इट इज नॉट जस्ट दोस हू हियर,
ये बस नहीं वो जो सुनते हैं,
इट इज दोस हू ओबे,
वो जो मानते हैं,
जो मानते हैं, दैट इज द प्रूफ ऑफ आवर फेथ।
आपका आज्ञाकारिता आपका विश्वास का असली सबूत है।
फेथ हैज टू हैव एविडेंस,
विश्वास का सबूत होना चाहिए।
वजन लिखा है हेब्राय के 11 के 1 में लिखा है, वजन विश्वास के बारे में क्या लिखा है?
11:11 और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
प्रमाण है, आपके विश्वास के प्रमाण क्या है? मेरे विश्वास के प्रमाण क्या है? विश्वास को एक प्रमाण है, एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। अगर ये व्यक्ति जो 38 साल से उधर बैठा हुआ है, यीशु का वचन सुनकर विश्वास आ गया, उसका प्रमाण क्या है? उसने आज्ञा पालन किया, उठा, बिस्तर भी उठाया, उसका प्रमाण वो है, वो है उसका प्रमाण, दैट इज द प्रूफ,
वो है सबूत,
वो है सबूत, उसकी ऊपर परमेश्वर काम करते। अगर हमारे विश्वास को प्रमाण नहीं है तो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आ सकता। हमारे विश्वास को एक प्रमाण होना पड़ेगा, इट हैज टू हैव एन एविडेंस, इट हैज टू हैव अ प्रूफ, सिर्फ सुनने की बात नहीं। याकूब का 2:14,
याकूब का
2:14,
हे मेरे भाइयों,
हे मेरे भाइयों,
यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
हाँ, उसको विश्वास है लेकिन विश्वास में प्रमाण नहीं है, क्या उसकी विश्वास उसे उद्धार दे सकते? आप बोलते मैं ईसा है, मैं विश्वास करते, लेकिन कलीसिया कभी भी नहीं जाते, क्या आप उसको जा सकते? मैं विश्वास है लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करते, क्या स्वर्ग जाते? क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना क्या है? तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मैं विश्वास है लेकिन वह परमेश्वर का वचन पढ़ना आदत ही नहीं है, तुम स्वर्ग जाएगा? मैं नहीं बोल रहा जो जो परमेश्वर का वचन पढ़ते वो लोग सब स्वर्ग में जाते हैं, नहीं। अगर आपको विश्वास सच्चाई है तो उसका प्रमाण क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रखेगा। ये सब हमारे विश्वास के प्रमाण होना पड़ेगा, प्रमाण से विश्वास नहीं होता, विश्वास को प्रमाण होना पड़ेगा। सो वी हैव टू लुक वेदर आवर फेथ हैज वर्क्स।
तो हमें ये देखना है कि क्या आपके विश्वास के पास कर्म है।
19:19
तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है,
अरे
तू अच्छा करता है,
सबने विश्वास किया एक ही परमेश्वर है
क्या विश्वास करते हैं
विश्वास करते हैं हाँ हमारे विश्वास किसके समान है
दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं
उसकी विश्वास के समान है उतना ही हो गया उसके आगे नहीं गया उसको भी हमसे भी अच्छा उसका डॉक्ट्रिन तो सिद्ध है
उसका सिद्धांत बिल्कुल सही है
उसको मालूम है ये संसार के लोग को मालूम नहीं है कितने परमेश्वर है कितना भगवान है अलग 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 सिद्धांत है सैतान का सिद्धांत ठीक है उसको मालूम है एक ही परमेश्वर है उससे ज्यादा हमसे भी अच्छा है उसके बाद क्या लिखा है उसने कम नाउ टू 19 क्या
और थरथराते हैं
वो डरते परमेश्वर से हम परमेश्वर से डरते देख लो कितना अच्छा है उसका विश्वास उसको मालूम है एक ही परमेश्वर परमेश्वर से डरते लेकिन क्या नहीं है उसका विश्वास के अनुसार प्रमाण नहीं है विश्वास का काम नहीं परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते प्रभु बोल रहे अगर तुम भी बोल रहे मैं एक ही परमेश्वर पर विश्वास किया मैं भी डर रहा हूं लेकिन आपके विश्वास के अनुसार प्रमाण के काम नहीं है तो शैतान का विश्वास है तुम्हारा उद्धार के विश्वास तक नहीं पहुंचा उद्धार की परमेश्वर अब सुन लो जब जब यीशु आया जो लोगों को दुष्टात्मा पकड़ा था दुष्टात्मा का सिद्धांत अलग ए जीवित परमेश्वर का पुत्र करेक्ट था पत्रोस को भी मालूम नहीं योहना को भी मालूम नहीं भीड़ को भी मालूम नहीं ये कौन है इन लोग बोल रहे हमको मालूम है आप कौन है जीवित परमेश्वर का पुत्र है देख लो कितना करेक्ट है उन लोगों का सिद्धांत लेकिन उन लोग स्वर्ग जाएगा नहीं क्यों आज्ञा पालन नहीं करेगा और 20
पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है
कर्म बिना विश्वास का एक कर्म है देयर इज द वर्क दैट इज अटैच्ड विद फेथ
विश्वास का एक कर्म है जो उससे जुड़ा हुआ है
वो कर्म विश्वास को पूरा करता है नहीं तो हमारा विश्वास कैसे है मरा हुआ व्यस्त है मरा हुआ व्यर्थ है 26 में भी लिखा है क्या लिखा है 26 में
निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है
क्या लिखा है जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है वैसे विश्वास भी कर्म बिना
मरा हुआ
विश्वास कहां से आते हैं सुनाई से सुनाई कहां से आते हैं परमेश्वर मसीह के वचन से मसीह के वचन सुनने ध्यान से सुनना परमेश्वर एक बात या दो बात बोलेंगे वो बात है विश्वास पूरा करना जब यीशु मसीह काना में गया उधर शादी में गया एक समस्या था समस्या क्या था दागरस खत्म हो गया उसके मैं आकर बोला बेटे उसने बोला माँ आप अलग हो जाए इससे डोंट इंटरफियर इन माय मिनिस्ट्री
आप मेरा
अगर आपका बेटे या आपका बेटे मिनिस्ट्री में है एक पासवान है तो अगर आज इधर बैठा हुआ एक बाप है माँ है मिनिस्ट्री में इंटरफियर मत करना
ये घर में आप काम मत रहे
ये घर का काम नहीं है परमेश्वर का काम है डोंट इंटरफियर
मिनिस्ट्री में टांग मत रहिए अगर आपका बेटा
आप पासवान के बड़े भाई है बड़े बहन है तो मिनिस्ट्री में इंटरफियर नहीं करना मूसा तो छोटी भाई था बड़े भाई भी बड़े बहन भी था उनने इंटरफियर परमेश्वर बोला अलग बैठो ये परमेश्वर का काम है माँ भी इंटरफियर मत करना बड़ा भाई भी इंटरफियर मत करना बड़े बहन भी मत आना ये परमेश्वर का काम है घर का काम नहीं है ये संसार का काम नहीं है परमेश्वर का काम है उसको छोड़ देना उसने जाकर वो सेवक था तो दासों था वो घर में उनसे बोला जो वो बोलते वही करना उसने दास को बुलाकर बोला उधर 6 कटोरा रखा है उसमें पानी भर दो उन लोग ने पानी भर दिया और उसकी बात बोला एक ग्लास पानी लेकर मालिक के पास स्वामी के पास दो उन लोग सिर्फ यीशु दो बात बोला जो दो बात माना उसकी बात चमत्कार के काम हो गया विश्वास में एक काम है वो काम हम सुनना पड़ेगा क्या बोल रही है प्रभु मुझसे आज से शाम तक सुबह से शाम तक शिक्षा होगा लेकिन विश्वास से सुनना परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहे हैं जब यीशु जकेयस के घर में गया वचन में लिखा नहीं भाषण दिया नहीं दिया वाला बहुत सारे लोग था दिया होगा, मालूम नहीं। जके सुन रहे यीशु के भाषण के बीच में, आत्मा उससे क्या बोल रहे, उसका मालूम हो आत्मा क्या बोल रहे, क्या है, तूने बहुत सारे लोग से पैसा छीन लिया है, चोरी किया है, वापस दो। उसने उठकर जो सुना उसकी अनुसार एक प्रतिक्रिया थे, एक काम किया, उठकर बोला जिस जिससे मैंने पैसा लिया है चार गुना वापस दूंगा और आधा संपत्ति। जब मैं गैंगटॉक में था, बड़ा कलीसिया था, बड़े बड़े लोग था, उसको उधर का वो चीफ पास्टर, वो पहले रिटायर होकर अब मेन पास्टर, उम्र बड़ा हुआ है, वो सिक्किम का चीफ सेक्रेटरी था, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर बैठा हुए हॉली, दसरा का बड़ा मीटिंग था, तीन दिन उधर कलीसिया में सेवा था। सेवा के बाद शाम को लोग आकर मुझसे मिलेगा, उसमें एक व्यक्ति आकर बोला बस मैं सरकार में हूं, आज वजन सुना आत्मा मुझसे बोल रहे सरकार से बहुत सारे पैसा लिया है मैंने, वापस करना पड़ेगा सब। मैं बोला अगर सीधा उधर जाना है तो वापस करना ही पड़ेगा। क्या होते हैं लोग, क्या करते हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, ईसाई के बारे में बोल रहे, जब उद्धार की बात, हम क्या करना पड़ेगा, लोग क्या करते, रांची से जमशेदपुर गया लेकिन बस में जाते 150 रुपए, लेकिन टैक्सी फेयर लिख कर देते, जा रास्ते में वो चाय दुकान में 50 रुपये का चाय और रोटी खाते, 200 का बिल देते, पकड़ दिया प्रभु उधर ही, क्या मैं सच्चाई का परमेश्वर हूं, तो मेरे शरीर की भाग है ना, तुम्हारे जीवन में सच्चाई है, सच्चाई के बिना सुधार हो सकते, सच्चाई के बिना उद्धार हो सकते, सच्चाई के बिना स्वर्ग जा सकते, सकेस इसलिए बोला सत्य मिलने के लिए मूल चुकाना पड़ेगा। सकेस देख ले इतने संपत्ति है, लेकिन मरने के बाद ये संपत्ति से क्या करेगा, अगर नरक गया तो उधर जाना है ना, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाता। इसने बोला अरे प्रभु मैं उधर तो नहीं जाएगा, संपत्ति बेचकर क्या खरीदेगा, सत्य खरीदेंगे। ये सब ये बोल रहे विश्वास का एक काम है, ध्यान से सुनना, मेरा भाषण नहीं, भाषण सुनना, शिक्षा सीखना, वजन सब लिखना, नोट्स बनाना, लेकिन आत्मा आप से अलग अलग व्यक्ति से क्या बोल रहे। मैं सब जगह में बोलते, कई पति से बोलेगा परमेश्वर जाकर तुम्हारे श्रीमती से माफी मांग लो, कारण क्या है, तुम बहुत कठोर आदमी है, कठोर बात करते, ठीक से बात नहीं करते, उससे प्रेम से बात नहीं करते, तुम वजन का विरुद्ध में जाते। परमेश्वर यीशु दुल्हा है ना, हम दुल्हन है, हमसे कठोर बात रोज करते, सत्य की बात करते लेकिन नम्र बात करते, कठोर बात नहीं करते। देख लो ये सब वजन में, मेरे बात मत मानना, इसलिए हम ये लेकर रखा है, अब वजन देखना। पहली पत्रोस 3:7,
वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ,
बुद्धिमानी से और पत्नी
पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान कर।
कैसे मानना, पहले पति अपने पत्नी को कैसे मानना, वो क्या है
निर्बल पात्र,
आप भी मान लीजिए, अगर कठोर लगेगा तो आप स्त्री कितने बैठे हुए मान लीजिए, वजन के अनुसार मैं क्या हूं निर्बल पात्र, और श्रीमान क्या मानना, मेरे श्रीमती क्या है निर्मल, उसके अर्थ क्या है निर्बल अर्थ क्या हो, उन लोग भावना में चलते। अब ये तो नए शादी हुए हैं, ठीक है, कितना महीना हो गया शादी होकर, 7 महीना हो गया, अराउंड 7 मंथ्स ना, उसका शादी फेब्रुवरी मैंने हमने उसको शादी करवा दिया, क्या अच्छी लड़की है, मेरे कलीसिया की अच्छी लड़की। कल रात को भी वो पूछ रहा था पास्टर अंकल कैसे मेरे श्रीमती से, मैं क्या बोला व्हाट दे नीड,
उनको जो जरूरत है,
व्हाट वी नीड इज कंप्लीटली डिफरेंट,
और जो हमें जरूरत है वो बिल्कुल अलग है।
कारण क्या है, उन लोग क्या है
निर्बल,
अगर मेरे श्रीमती मुझसे नहीं बोलते आई लव यू नहीं बोलते, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है,
अगर वो मुझे
लेकिन वो तो हमसे रोज सुनना चाहते हैं, देख लिया? तो मैं बोल रहा हूं, अरे तुम जैसे मत सोचो उसको। अब पांच दिन फर्स्ट टाइम शादी के बाद पांच दिन अलग है, क्योंकि जमशेदपुर से ये इधर आया हूं, उसको भी इधर डॉक्टर आ नहीं सका, तो पांच रात पांच दिन में बोला। सुबह बोलते शाम को फोन किया, उससे बातचीत किया, फोन किया, बातचीत किया, कारण किए, वो क्या है? नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, ये मन में सोचना। अगर हमारे श्रीमती हमसे कुछ कठोर बात बोलेगा तो हमारे लिए कुछ नहीं, कि हम तो निर्मल पात्र नहीं है, और जो जो श्रीमान इधर बैठा हुए निर्मल पात्र मत बनना, कठोर होना। हाँ मेरे बीबी ने ऐसे बोला, बोलकर मत रोना। अरे जाने दो, बेचारे तो निर्मल पात्र है। जब मैं सिक्किम जाने के दो दिन आगे तीन दिन आगे मेरे श्रीमती, हम लोग रात में था, श्रीमती को बहुत दर्द हो गए, तो मैं बोला अरे छोड़ दो, गैस होगा, नहीं दर्द है। चर्च में कितने डॉक्टर है, सबको फोन कर रहे, किसी ने फोन नहीं उठाया। रात को 11 बजे दो डॉक्टर ने एक ही टाइम फोन, उन लोग बोल रहे दर्द कहां से इधर जा रहे। मैं हाँ तो जल्दी लेकर चलो, अपेंडिक्स होगा नहीं तो किडनी में स्टोन होगा। तो दो डॉक्टर बोला हम आ जाएगा अपोलो में, आप बच्चे को श्रीमती को लेकर आओ। उधर पहुंचा देखा क्या है, किडनी में स्टोन है। तो फ्राइडे को किडनी का स्टोन का वह सर्जरी किया, सैटरडे को फुल डे मेरा पास्टर कॉन्फ्रेंस था, संडे सेवा था, मंडे सुबह सिक्किम गया, उसकी वापस आकर अभी इधर आया। इधर आते टाइम में डॉक्टर बोला वो स्टेंट लगाया हुआ है, स्टेंट लगाया हुआ है, कल स्टेंट निकालना है। सुबह इधर आते टाइम में श्रीमती सर्जरी के लिए जा रहे, तो बातचीत कर रहे, प्रार्थना करना, प्रार्थना किया, बोल वो बोल रहे उधर आई लव यू, सर आई ऑल्सो लव यू हनी, नो प्रॉब्लम, ओके। निर्मल पात्र एक छोटी सा सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन भी डर है, अगर जाकर जिंदा नहीं वापस आया तो तुझे मैं बहुत प्रेम कर रहे, मैं वो तो बहुत तुम्हें भी प्रेम कर रहे है ना। तो जब वापस सर्जरी से वापस आया, इधर सेवा खत्म हो गया, बोल रहा मैं ठीक हूं, मुझको मालूम था तुम ठीक होगा। और गवाही देखना, वो बहुत प्रार्थना करने वाले स्त्री है, गवाही देखना। जब वो ईआर में ऑपरेशन के लिए, एनेस्थीसिया के लिए रूम में जाते टाइम में, वही ऑपरेशन के लिए एक छोटी बच्चे है, वो बच्चे रो रहे हैं, और उसके लिए प्रार्थना किया। एनेस्थीसिया करने वाले वो डॉक्टर अविश्वासी, वो वाकर बोल रहे आप ईसाई है, क्योंकि देखते से जानता अब एक पवित्र स्त्री है, मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सर्जरी के जाने के आगे एनेस्थीसिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और सर्जरी के बाद वापस आते टाइम में जो सर्जरी किया डॉक्टर, उससे बोलना मैडम अगर मैं मेरा स्टाफ और पेशेंट्स को एक दिन इधर लेकर आयागा तो विल यू टॉक टू देम,
क्या
उनसे बातचीत कर। सब अविश्वासी लोग, सब इसमें विश्वासी कोई नहीं है, सब अविश्वासी, देखना, क्योंकि ये सब विश्वास के काम है। हमारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए खोज रहा है, लेकिन देखने कौन सच्चाई में चल रहे, सो जो विश्वास में चल रहे। सर्जरी में, ऑपरेशन थिएटर में भी परमेश्वर अपने लोग पेशेंट तो भी चला सकते, डॉक्टर के लिए प्रार्थना कर सकते, ये सब विश्वास की बात है। स्त्री क्या है? नम्र पात्र है। उसको कैसे वजन में लिखो, कैसे कैसे करना, कैसे उसके निर्मल पात्र जानकर उसको
बुद्धिमानी से पत्रियों के साथ निर्वाह करो, और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो।
कैसे आदर करना? निर्बल, उस अच्छे से पढ़ना, निर्बल पात्र मानकर आदर करना। अगर ये स्टील का ग्लास है, ये शीशा का ग्लास है, ये हम अब मालूम है ये प्लास्टिक है, नहीं तोड़ेगा ना, नहीं तोड़ेगा। पुरुष क्या है? स्टील का ग्लास है। स्त्री क्या है? ओ क्या कारण क्या है? वो आदर भी अलग होता। जब हम मानते हैं मेरे श्रीमती एक निर्बल पात्र है, उसका आदर अलग होता। वैसे आदर करना, वजन अच्छा से पढ़ना, गिव हर ऑनर एज अनटू अ वीक वेसल, एक निर्बल पात्र के उसको आज समझकर उसको आदर देना। श्रीमान लोग कितना इधर बैठा हुआ कि वजन क्या बोल रहे, अपने श्रीमती को आदर देना। अगर क्या नहीं होता, अगर हम आदर नहीं देते, उसको नहीं मानते ये निर्मल पात्र, हम कठोर से उसको बातचीत और हमारा तरीका है, तो वजन में उसकी बात क्या लिखा है, तुम्हारा जिससे तुम्हारा प्रार्थना रुक ना जाए, तुम्हारा प्रार्थना रुक जाए। बहुत सारे लोग पासवान लोग भी प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, इधर से ऊपर भी नहीं जाते, खिड़की से बाहर भी नहीं जाता, घर में रुक गया, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे तुम्हारे श्रीमती का आंसू मैंने देख लिया, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकते जब तक तुम उसको आदर से चलाते। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का उत्तर कहां है, घर में ही है, यह वजन है, वजन के विरुद्ध हमारा एक जीवन नहीं हो सकता, वजन के विरुद्ध एक जीवन नहीं हो सकता, वजन के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत सारे के लोग हम दुष्ट आत्मा को बांध रहे, यीशु मसीह के नाम में बांध रहे, मेरा प्रार्थना का प्रभु बोल रहे उसको मत बांधो, तुम इससे अच्छा से चलो, तुम उसको क्यों बांध रहे, उसने तुम्हें बांध कर रखा है, तुम श्रीमती से, अपने पत्नी से, अपने पत्नी से जान समझकर निर्मल पात्र है और उसके अनुसार आदर करना, क्योंकि तुम लोग दोनों क्या है, तुम लोग दोनों जीवन का वरदान की वारिश है, दोनों जीवन के वरदान की वारिश। उधर ठीक हो गया तो बाकी ठीक हो सकते, ठीक हो सकते, ये सब विश्वास की बात है। हम विश्वास में आज्ञापाली नहीं है तो हमारे विश्वास में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आगा। स्त्री के लिए क्या लिखा है, अब पुरुष के लिए बोला ना, बस स्त्री के नहीं छोड़ नहीं सकता ना, नहीं तो पुरुष सब ऐसे बैठा हुए, स्त्री लोग सब मुस्कुरा रहा है, तो स्त्री के लिए भी वजन में, मेरे भाषण नहीं, वजन में क्या लिखा है, वजन में क्या लिखा है, एफिशी सबको मालूम है, एफिशी 22।
हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के।
23 भी पढ़ लो, कारण बोला है,
क्योंकि
क्योंकि
पति पत्नी का सिर है।
हाँ, पति कौन है, पत्नी का सिर है, जैसे यीशु
जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप खुद ही देह का उद्धार करता है।
एक मिनट रोकना, अब ये सोच लो, ये पत्नी है, मैं पति है, पति पत्नी का कौन है, सिर है, मेरा सिर कौन है, यीशु है, यीशु का सिर कौन है, परमेश्वर है। अभिषेक मेरे ऊपर नहीं है, अभिषेक यीशु के ऊपर है, यीशु है सिर। हारून के बारे में हमें पढ़ा हुआ है, अरोन के ऊपर अभिषेक आया तेल के स्वरूप में, वो अभिषेक उसके दाढ़ी से नीचे तक आ रहे, अभिषेक आया। परमेश्वर इसराइल के लिए किसके ऊपर अभिषेक कर रहे, मुख्य पुजारी के ऊपर, और अभिषेक इसराइल के पूरा आ जाएगा। परमेश्वर बोल रहे यीशु है सिर, यीशु के ऊपर अभिषेक है, मेरा सिर कौन है, यीशु, मेरा काम क्या है, यीशु के नीचे आना, यीशु के नीचे, कारण क्या है, अभिषेक मेरे जीवन में चलेगा। श्रीमती का काम क्या है, पति के नीचे अधीन में, कारण क्या है, अभिषेक चलेगा। जब अधीन में लोग नहीं आते, अभिषेक काम नहीं करते, अभिषेक ना काम नहीं करते, अभिषेक की बात है। जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च,
यीशु मसीह कलीसिया का सिर,
मैन इज द हेड ऑफ द वुमन,
पुरुष स्त्री का सिर।
ये अधीन 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 हो, अधीन हो, अधीन हो, कारण क्या बोल रहे, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ हमारे जीवन में आने के लिए क्या हो चाहिए, हम वो सिर के नीचे आना पड़ेगा। अगर ये सोच लो, ये सिर है, मैं शरीर हूं, देख लिया, लोग क्या देख रहे, सिर ही देख रहे। अगर मैं सिर से अलग हो गया, मैं श्रीमती अलग हो गया, उसके बात नहीं मान रहे, अभिषेक कहां है, उधर है, मेरे जीवन में आते हैं, छतरी इधर है, पानी इधर आ रहा है, कैसे होगा, बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे, छतरी इधर है पानी इधर है, छतरी के बाहर चल रहे। परमेश्वर बोले अभिषेक के नीचे आओ, अभिषेक के नीचे आओ। इसलिए वचन में जो स्त्रियों को उदाहरण के रूप में, पवित्र स्त्री के उदाहरण में, पूरा नया नियम में सिर्फ एक ही स्त्री के बात लिखा है, वो स्त्री है सारा। रेबेक के बारे में लिखा नहीं। बहुत सारे साल वो क्या था, अधीन में था, लेकिन जब एक दिन उसकी पति थोड़ा अंधा हो गया और शारीरिक रूप में चला, उसके अधीन से निकला रबेका ने, अधीन से निकला, और याकूब के बोलकर बोला मैं बनाई दूंगा, तुम जाकर आशीष ले लो। याकूब बोला मुझके डर है, मुझको कुछ आप हो जाएगा। मां ने क्या बोला, अरे छोड़ दो, मेरे ऊपर आने दो। इसकी ऊपर ही आया। जब याकूब 20 साल के बाद आते ही उसके आगे उसके मां का मृत्यु हो गया। रेचल भी अपना पति का अधीन में कभी नहीं आया, इसके भी मृत्यु पहले ही हुआ। कारण क्या है, ये स्त्री अंत तक अधीन में नहीं चला, सारा अंत तक अधीन में चला। जब जो मिस्र देश में, जब प्रतिज्ञा के देश में आया और उसके पति तो ठीक नहीं है, बहुत डरपोक है, वो बोल रहे अनिकाल अकाल आ गया, हम मिस्र देश में जाएगा, तुम सुंदरी है, तुम्हारे वजन मेरे मृत्यु भी हो जाएगा, तुम सबसे बोला तुम कौन है, मेरा बहनों, अधीन में आया तो बोला, उसको पकड़ कर ले गया। लेकिन परमेश्वर फारो को छूकर उसको बचा दिया। लेकिन वजन में ऐसे लिखा है, नाउ आई, अभी तो उसको उम्र 90 हो गया, परमेश्वर का अगुवाई हो गया, वो गर्भवती है, अभी नानी भी बनने वाला है। वो टाइम में फिर वो गरार जाते टाइम में अब्राहम बोल रहे, अरे इधर के लोग भी ठीक नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है इधर, तो क्या बोलना अगर कोई पूछेगा तो, तुम मेरे बहन। देख लो दो बार, फिर भी उसने क्या विरुद्ध में कुछ बोला, नहीं बोला, उसने बोला ठीक मालिक, ठीक स्वामी। अभी मलिक लेकर गया, वो 90 साल में कितना सुंदरी होना पड़ेगा ना, देख लो वो सौंदर्य कहां से आते हैं, चेहरे से मेकअप से नहीं, आत्मा से आते सौंदर्य, आत्मा से चेहरे में आ रहे। 90 साल हो गया फिर भी इतना सुंदरी है, और वो राजा ले गया। परमेश्वर रात में सपना में आकर बोला वो स्त्री को ऊपर तुम हाथ लगाएगा तो तुम, तुम्हारा खानदान खत्म, तुमको मालूम नहीं वो स्त्री कैसे स्त्री है। और वजन में क्या लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा पहले पत्रोस के 3 में क्या लिखा है, 4 and 5 and 6,
पर तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य,
हाँ वो गुप्त मनुष्य,
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है।
हाँ, हम किसकी दृष्टि में देखना पड़ेगा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्य है, प्रभु मुझे वैसे बनाओ। और उसकी बात,
और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी,
पवित्र स्त्रियों भी
जो परमेश्वर पर आशा रखा,
पहले उसने किस पर आशा रखा, अपने पति पर नहीं, परमेश्वर पर आशा रखा। हमारे समस्या क्या है, श्रीमती किसके ऊपर आशा रखते हैं, पति पर। परमेश्वर बोला नहीं, पति पर, बहुत सारे पति धरपुक है अब्राहम जैसे, उसके ऊपर भरोसा मत रख, तुम मेरा ऊपर भरोसा रख। अगर तुम्हारा पति ठीक से नहीं चलेगा तो भी तुमको मैं बचाऊंगा। अभिगेल का पति एक फूल, मूर्ख था, लेकिन भी उसका अधीन में आया। जब वो when he was drunk,
जब वो पी चुका था, नशा में था,
and he said things against David,
और दाऊद के खिलाफ बुरे शब्द कहा, वो
क्या अभिगेल उससे झगड़ा किया, नहीं, उसने क्या किया, ये तो पी कर आया है रात को, सोने दिया, सुबह उठकर नम्र से बात किया। बहुत सारे श्रीमती को पिता पत्नी पति क्या पी कर आते रात में, वो भी झगड़ा करते हैं, वो भी देते हैं, भाषण चलते हैं, सारे पड़ोस के लोग सुन रहे, क्या होना। अब बुद्धिशाली है तो चुप रखो। सुबह जब वो उठते शांत है, वो टाइम में शांत में बात करना, शांत में बात करना, बिकॉज दे आर होली वीमेन,
क्योंकि ये लोग पवित्र स्त्री है।
और वचन में क्या लिखा है, हु ट्रस्टेड इन गॉड, जिसने परमेश्वर पर अभिशाप
रखती थी, अपने आप को इसी रीति से सवारती और अपने अपने पति के अधीन रहते थे।
और छह,
जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी।
क्या कहते? तुम मेरा सिर हो, तुम मेरा स्वामी हो। अब स्वामी बुलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सिर है मानना पड़ेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना, पति पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। और वचन में लिखा है, एंड या फिनिश इट,
तुम भी यदि पढ़ाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो,
किसी प्रकार के भय से
ना हो।
सारा का भय नहीं था, पति ने बोला, बहनों बोला, बहन बोला, राजा कब सेवक आकर पकड़कर उस दूसरे घर में लेकर गया, लेकिन भाई नहीं था, क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर दी घर से भी मुझे बचाएगा। 90 साल में गर्भवती है, अभी मैं लेके दास पकड़कर लेकर गया, भाई नहीं था, क्योंकि भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था। मत डरना, जो स्त्री जो पुरुष परमेश्वर पर भरोसा रखता हुए नहीं डरते, नहीं डरते, आज्ञा पालन करी जाते। सो यू हैव टू रियलाइज योर फेथ हैज टू हैव वर्क्स।
आपका विश्वास कि काम होना चाहिए,
फेथ हैज टू हैव वर्क्स,
आपके विश्वास के कार्य होना चाहिए।
इफ योर फेथ डज नॉट हैव वर्क्स ऑफ ओबीडियंस,
अगर आपके विश्वास की आज्ञाकारिता के कार्य नहीं पाए गए,
देन इट हैज नो मीनिंग,
तब वो व्यर्थ है,
इट हैज नो मीनिंग,
तब वो बिल्कुल
अनर्थ है। विश्वास के अनुसार एक काम है। वचन में लिखा है विश्वास कहां से आते हैं? सुनाई, सुनाई कहां से आते हैं? परमेश्वर का वचन, सब कुछ। हेब्रायर की 11:4, हेब्रायर के 11 में बहुत सारे लोग जो विश्वास में चला उन लोग के नाम दिया है। वचन में क्या लिखा है?
विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर,
दो व्यक्ति, दो भाई, एक ही परिवार से आया, एक ही घर से, घराना से आया वाला, दो भाई बलिदान के टाइम में आराधना कर रहे, बलिदान लेकर आया, दोनों का बलिदान अच्छा है, लेकिन एक का बलिदान उत्तम है। कारण क्या है? उसके बलिदान के साथ उसने क्या जोड़ा?
विश्वास,
विश्वास जोड़ा, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। विश्वास कहां से आते हैं? सुनाई कहां से आते हैं? परमेश्वर के वचन से। अरे एक मिनट रोको, ये कहां लिखा है? उत्पत्ति के 4 में, उत्पत्ति के 4 के पहले में। ये विश्वास उसको कहां से आया? उसका वही विश्वास कहां से? वही क्या सुना? वजन कहां से सुना? वजन में उसके आगे सिर्फ 3 अध्याय है।
कितना वचन सुना?
कितना वचन सुना? ये 4वां अध्याय में, 3 अध्याय है। हम देखना 3वां 3 अध्याय का अंदर कुछ तो कुछ होगा। इसने विश्वास से कैसे किया? वजन में लिखा है 3 अध्याय में लिखा है, यीशु परमेश्वर जब आदम और हवा को इधर से बगीचा से निकलकर संसार पर छोड़ने के आगे एक काम किया, वो काम क्या था? 3:21, उत्पत्ति के 3:21 में क्या लिखा है?
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर।
इधर देखना, इधर देखना, ध्यान इधर उधर मत जाना। लोग आएगा, लोग बैठेगा, हमारा ध्यान किसके ऊपर है? परमेश्वर और उसकी वाजन के ऊपर। दैट्स द फर्स्ट थिंग, फोकस,
पहला चीज ध्यान दे,
डोंट लेट गेट डिस्ट्रैक्टेड,
मन भटकने मत दीजिए।
वाजन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बनाया उन लोगों के लिए?
चमड़े के अंदर।
अरे चमड़े कहां से आया? स्वर्ग लेकर आ गया?
नहीं,
कहां से आ गया? तो इसको किसने मारा? परमेश्वर ने। क्यों मारा? बलिदान देने के लिए। आदम और हवा ने पाप किया, यीशु ने आकर इसके निमित्त बलिदान दिया और वो चमड़े से
रखा बना के उसे पहना दिया।
वो पहले इधर लिखा नहीं वो जानवर कौन है, लिखा नहीं, लेकिन 4वां अध्याय में लिखा है वो जानवर जो हाबिल लेकर आया एक मेमना था। और 4वां अध्याय में हमको मालूम है ये हाबिल एक कौन था? एक चरवा था, और काइन ले उसको मारेगा। इधर जानवर के नाम नहीं है, 4 में जो जानवर है मेमना है, और उसकी बात लिखा है चरवा मरा। इसका हमको मालूम होगा परमेश्वर का पुत्र एक मेमने के स्वरूप में चरवा बनकर आकर हमारे निमित्त मरेगा। उधर ही लिखा है उसने लहू दिया। ये सुना दो पुत्र कायन और हाबिल, और आकर क्या कर रहे हैं, एक ने विश्वास से पिता से सुना है, पिता का देखा है, एक ने विश्वास से एक बलिदान दिया। परमेश्वर क्या देख रहे, विश्वासी देख रहे। कारण क्या, लेवी के पुस्तक देख लो, लेवी के 17:11-14, परमेश्वर क्यों ये रखा,
क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता
है। ये शरीर का प्राण कहां है, जब तक आपका हृदय नहीं बंद होते, डॉक्टर भी नहीं बोलते आप मर चुका है। ब्रेन तो डेड है, कोमा में है, आईसीयू में है, मशीन में रखेंगे, लेकिन मरा हुआ नहीं बोलेगा। जब बोलेगा मरा हुआ है, जब आपका हृदय बंद होता, लहू जाने बंद होता, वो टाइम में परमेश्वर क्या, डॉक्टर क्या बोलेगा, व्यक्ति मर चुका। जहां जहां हमारे शरीर में लहू जाना बंद होते, वो भाग मरते। कारण कहां है, जीवन लहू में है। जीवन कहां है, लहू में। जब आप आदम और हवा पाप किया, उसको क्या आ गया, मृत्यु आ गया। मृत्यु का अर्थ क्या है, जीवन गया, मृत्यु आ गया। ये संसार में एक ही वस्तु है जिसमें जीवन है, वो वस्तु क्या है, इसलिए बोला लहू दो, इसलिए बोला लहू दो। पढ़ लीजिए,
लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है।
और 12,
इस कारण मैं इसराइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो
वो भी नहीं खाए। कारण क्या है, 13,
और इसराइलियों में से वे उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े व उसके लहू को उंडेल कर धूल में ढांप दे, धूल से ढांप दे।
14 भी पढ़ लो,
क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसके लहू में,
लहू में है। अब एक छोटी बात बोलेंगे, एक जानवर के जीवन कहाँ है, लहू में है। इसलिए पुराना नेम और नया नेम में बोला है लहू मत, लहू मत। नया नेम में बोला है प्रेरित की 15:28-29। जब नया कलीसिया शुरू होया, बहुत सारे लोग अविश्वासी अन्य जाति से आया है जेरूशलेम में। प्रेरित हर लिखता है, क्या लिखता है,
पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले।
नया विश्वासी एक दो बात ही बोला, अभी इसमें शुरू करो, क्या है,
कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए और लहू और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से भरे रहो।
लहू मत खाना, कारण क्या है, जानवर का जीवन कहाँ है, लहू में है। एक बात बताएंगे, कारण क्या है, बहुत सारे लोग इधर भी होगा जब विश्वास में आने के पहले लहू खाया है, फ्राई कर खाया है, बॉयल कर खाया है। प्रॉब्लम क्या है, वो जानवर का जीवन कहाँ है, लहू में। वो लहू खाते खाते वो जानवर का स्वभाव हमारे जीवन में आते, इसलिए परमेश्वर बोला मत खाना। एक जानवर का जीवन कहाँ है, उसके लहू में है। इसलिए एक छोटी बात बोलेंगे, अगर आप चिकन खरीदेगा तो मुसलमान के दुकान से खरीदना, उसका मांस हलाल है। उन लोग लहू नहीं लेते, उन लोग व्यवस्था में चलने लोग हैं। हमारे लिए भी अच्छा है उसके मांस खाना, बाकी लोगों से मालूम नहीं पड़ जाएगा उसमें लहू है कि नहीं। हम व्यवस्था नहीं तोड़ रहे, लहू खाएगा तो क्या होगा, वो जानवर की आत्मा के स्वभाव। इसलिए बहुत सारे लोग गोरु जैसे है, बहुत सारे लोग चिकन जैसे है, उसके लहू खाया है, कॉकफाइट हो रहे हैं घर में रोज,
लड़ाई
क्योंकि उसके लहू खाकर आ गए है। परमेश्वर ने बोला है ये सत्य बात, मत खाना। नया नेम है, पुराने नेम में क्या नहीं खाना, लहू मत खाना, क्योंकि जानवर के जीवन कहाँ है, और लहू किसके लिए दिया है, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के लिए दिया है। लेकिन हमसे जो नया करार में जो लोग हैं, यीशु बोल रहे, जब जब तुम बेला होते तुम क्या पीना, मेरे लहू के प्रतीक में दागरज है, मेरा लहू पीना, क्योंकि वो लहू में उसका जीवन है। मुझे क्या चाहिए, ये जीवन के बदले परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन चाहिए, इसलिए मैं उसके लहू लेते। देख लिया अलग फर्क, देख लिया, जानवर के लहू नहीं लेते, लेकिन यीशु का लहू का प्रतीक है। जब कलीसिया एकजुट होते, उसके शरीर के प्रतीक और उसके लहू के प्रतीक हम लेते हैं, कारण उसके शरीर में ताकत है, उसके लहू में जीवन है, इसलिए हम ये करते हैं। ये सब सत्य है, ऐसे मत लेना कम्युनियन, देखना उसका सत्य क्या है। पुराने नियम में बोला लहू मत खाना, मत लेना, नया नियम में बोल रहे यीशु का लहू। वो सिद्धांत से चेला लोग नाराज हो गया। यीशु बोला जब तक तुम मेरा शरीर नहीं खाते और मेरे लहू नहीं पीते, तुम मेरे जीवन का भाग नहीं मिलेगा। अरे ये कैसा सिद्धांत है, शरीर खाना लहू पीना? यीशु बोले आत्मिक सत्य है, तुम्हारे शरीर के बगैर मेरा शरीर, तुम्हारे जीवन के बगैर मेरे जीवन, वो जीवन में सामर्थ है। और वचन में लिखा है जो बलिदान के समय आया, दो व्यक्ति आ रहे, एक उसके मेहनत अच्छे काम सब लेकर, इस पृथ्वी का फल सब लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति विश्वास में आ रहा है। विश्वास कहां से और सुनाई कहां से? मसीह का वचन से। उसने सुना है लहू देना पड़ेगा, लहू देना पड़ेगा, उसने विश्वास से आते, काम से नहीं। अगर काम से, कायन जैसे काम से आएगा तो उसने क्या करना, मेमना को, जिंदा मेमना को लेकर देना था। काम से आया था, वो काम से नहीं आ रहे, अपने जो प्यार से पालन किया वो मेमना को पहली बार, ये नए संसार में बगीचा के बाहर पहली बार उसने वो मेमना को मार रहा है, वो मांस और लहू लेकर परमेश्वर की आगे, कारण विश्वास। विश्वास में एक काम है, जब हम विश्वास में एक काम करते परमेश्वर क्या करते वो मानते। विश्वास में क्या होना पड़ेगा, एक काम होना पड़ेगा, आज्ञा पाली होना पड़ेगा विश्वास की अनुसार। केन्स ऑफरिंग हैड ग्रेट सैक्रिफाइस, केन
का जो भेंट था उसमें बड़ा बलिदान था,
बड़ा बलिदान था अपने जीवन में। अरे देख लो, परमेश्वर बगीचा से ईदन से बाहर निकाला, पृथ्वी पर एक शाप भी दिया, यू विल हैव टू लेबर इन दिस ग्राउंड,
परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ताकि जमीन से आपको कुछ मिल पाए।
दिस ग्राउंड विल ब्रिंग थिसल्स एंड थॉर्न्स,
ये जमीन आपके लिए कांटा लाएगा,
एंड यू विल बाय द स्वेट ऑफ योर ब्राउ,
और अपने माथे के पसीना से इससे कुछ लाभ।
ओह, इट्स नॉट इजी। अब सोच लो किसकी काम है आसान, हाबिल का या काइन का? हाबिल का क्या, मेमने को बकरे को लेकर चलना, काइन को? He has to dig, he has to sow, he has to plant, he has to water, और इतनी मेहनत के बाद वो लेकर आ रहा है। परमेश्वर बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम भी कभी कभी गुस्सा आते, बहुत मेहनत के साथ बलिदान के साथ लेकर आएगा, प्रभु बोले नहीं चाहिए। प्रभु क्यों? विश्वास नहीं है। विश्वास कहां से आते हैं, सुनने कहां से आते हैं? परमेश्वर के वचन से। अब देख लो, जब यीशु मसीह संसार में आया, सुसमाचार में चार गॉस्पेल में लिखा नहीं है, लेकिन हिब्रिया लिखने वाला है वो वक्ता ने लिखा है, जब यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हिब्राय के 10:5-7 तक दो बार ये यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
इसी कारण वो जगत में,
जब वो जगत में आया उसने बोल रहे
हैं, बलिदान और भेंट,
बलिदान नहीं चाहिए तुमसे और भेंट नहीं चाहिए तुमसे, और
पर मेरे लिए एक देह तैयार किया,
मेरे लिए एक देह तैयार किया है, और उसके बाद
होम बलि और पाप बलि।
अरे होम बलि पाप बलि कुछ नहीं चाहिए,
तुम प्रसन्न नहीं
हो।
तब मैंने कहा
आपको क्या चाहिए, देख मैं आया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया हूं। वो है विश्वास। पवित्र पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है वो पूरी करने के लिए मैं आया हूं। आप बलिदान नहीं देख रहे, कितने भेंट दिया वो देख रहे, वजन के अनुसार विश्वास में मेरे काम कर रहे ये नहीं, वो देख रहे। इसलिए पौलुस जब लिख रहा है पहले कुरिन्थियों में ऐसे लिखा है यीशु के बारे में, अच्छी एक बात है उधर पहले कुरिन्थियों 15:3-4।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया।
एक मिनट, यीशु मसीह हमारे पापों की मरा नहीं लिखा है, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार पापों के लिए लिखा है। हे प्रभु, ये पुस्तक में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है, वो करने के लिए, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। यीशु ऐसे नहीं मरा, पवित्र शास्त्र में कैसे लिखा है वैसे ही मैं मरा। पवित्र शास्त्र में क्या है, परमेश्वर का मेमने होने के लिए जब तक तुम जिंदा होगा तब तक सोच विचार बात काम में पापी नहीं होना, एक पापी नहीं कर सकते, वैसे तुम मरना पड़ेगा, वैसे तुम मरना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र के अनुसार पुराण नियम में लिखा है जो मेमने को लेकर आते हैं और जब वो चढ़ाता है वो मेमने को देखना, अच्छा से देखना,
मेमने को जांचने और देखने कि वो बिल्कुल निष्कलंक हो,
बिल्कुल निष्कलंक हो। वजन में ऐसे लिखा है यीशु के बारे में, हिब्राहर के 4 में क्या लिखा है, हिब्राहर में ये सब लिखा है, हिब्रूस 4 4:15।
क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके,
कारण
वरन वो सब बातों में
हमें जैसे
हमारी नाई
परखा तो गया लेकिन
तो भी निष्पाप निकला,
पाप नहीं किया, सब बातों में परखा गया लेकिन कभी भी पाप नहीं किया। सब पवित्र शास्त्र के अनुसार मरना पड़ा, पाप नहीं करना, अगर एक पाप किया उसके बाद मरे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं, इतने व्यवस्था के अनुसार, इतने हजार सालों को वो मेमना को लेकर आते टाइम में वो मेमना निष्कलंक होना पड़ेगा। जब यीशु क्रूस में चढ़ने मरने टाइम तक वो कैसे होना पड़ेगा, निष्कलंक होना पड़ेगा शास्त्र के अनुसार। इसलिए ऐसे लिखा है हेब्रायर के 5:7 में लिखा है उसका प्रार्थना का जीवन अलग ही था। उसके प्रार्थना का जीवन क्या था, 5:7 में क्या लिखा है,
देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से
पुकार कर
आंसू बहाकर उसे जो उससे उसको मृत्यु से बचा सकता प्रार्थना और विनती की
और भक्ति के कारण
सुनी गई।
लेकिन सुनी गई, इधर लिखा है सुनी गई, लेकिन हमको वास्तव मालूम है उसको प्रार्थना का सुनी गई, वो तो मरा। इधर लिखा है मृत्यु से बचाओ और प्रार्थना सुनी गई, तो क्या मृत्यु के बाद बोल रहे, दो मृत्यु है, हम लोग सब मरेंगे एक दिन, कारण हमने पाप किया, पाप में जन्म हुआ, पाप के कारण हम लोग सब एक दिन मरेंगे, लेकिन यीशु पाप के कारण नहीं मरा, पाप के कारण नहीं मरा, ही डाइड फॉर सिन,
वो पाप के लिए मरा,
पाप के लिए मरा। इसलिए जब ये देश में था पाप के लिए मरने के लिए आए, अगर एक पाप किया तो पाप के लिए नहीं मर सकते, परमेश्वर का वो मेमना नहीं बन सकते। इसलिए उसके हर दिन का प्रार्थना, सुबह सुबह उठकर उसका प्रार्थना क्या है, पुकार कर आंसू बहाकर, परमेश्वर आज का दिन आपके विरुद्ध में सोच विचार काम में पाप करना मत देना, परमेश्वर पाप करना मत देना, अगर एक पाप हो गया तो मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार मर नहीं सकते, पवित्र शास्त्र के अनुसार वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड,
हमें वचन के अनुसार जीवन जीना
है। और वचन पहला कोरिंथियर का 15 फिर देख लो 15 तीन अपने अभी तीन पढ़ा या पढ़ दी लीजिए।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए
मरा और चार
और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के
अनुसार
तीसरे दिन
अरे पवित्र अरे चारवां दिन उठेगा तो काम नहीं चलेगा क्यों पवित्र शास्त्र में लिखा है तीसरा दिन उठेगा अरे दूसरा दिन उठेगा तो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है तीसरा दिन वजन में यीशु बोला एक ही छिन देगा तुमको लिए क्या वो छिन जोना के छिन क्या है तीन दिन तीन रात बोला यीशु ने तीन दिन तीन रात कितना दिन कितना रात
तीन दिन
फिर एक बार बोले कितने दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार कितने दिन
तीन दिन
एक मिनट गुड फ्राइडे एक दिन एक रात सैटरडे एक दिन एक रात और रविवार सुबह उठ गया तीन दिन तीन रात हो गया नहीं होएगा क्यों फिर सारे ईसाई लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार है नहीं है नहीं है शास्त्र के अनुसार नहीं है इसलिए हमारे कलीसिया में नहीं मानते संसार पूरा चलो पवित्र शास्त्र क्या बोल रहे शास्त्र के अनुसार यीशु ने मरा और जी उठा तीसरा दिन अगर तीसरा दिन तीन रात हो तो फ्राइडे में नहीं मरा थर्सडे को मरा वो पिसहा का दिन था
वो पसा पर्व का दिन
अब इसके ऊपर झगड़ा मत करो छोड़ दो मैं पवित्र शास्त्र में वापस आ रहे क्योंकि हमारा विश्वास कहां से आना पड़ेगा वजन से आना पड़ेगा सब वजन की होना पड़ेगा जब हम वजन में चलते टाइम में अरे आप लोग गुड फ्राइडे में घर में बैठ रहे कैसे ईसाई है अरे वजन के अनुसार ईसाई है पवित्र शास्त्र के अनुसार ईसाई है अगर फ्राइडे को दिन वो कहां है ही इज इन द ग्रेव
वो कब्र में
अरे हम क्या मनाना वो जो कब्र में है देख लिया हम ये सब नहीं सोचते वजन पढ़ते टाइम उन लोग सब आकर बोल रहे हमें एक छिन दे दो परमेश्वर का पुत्र है बोले एक ही छिन दोगा वो छिन कौन है योना जोना के छिन क्या है तीन दिन क्लियरली बोला साढ़े दो दिन और दो रात बोला
ढाई दिन दो रात
नहीं बोला तीन दिन और दो रात बोला दो दिन और तीन रात बोला तीन दिन तीन रात वही है पवित्र शास्त्र उसकी शास्त्र की अनुसारी वो मरा और जी उठा और शास्त्र के अनुसार ही वॉज बरीड
वो गाड़ा गया
वो भी वजन में लिखा है पुराना नियम में लिखा है वो कहां उसको रखेगा वैसे ही उसको रखा उधर भी लिखा है नॉट इवन ए बोन ऑन हिज बॉडी विल बी ब्रोकन नहीं टूटने वाला है जब वो सिपाही आया हड्डी टूटने के लिए इसको तोड़ने के लिए इसके तोड़ने के इधर आते टाइम उसको मर चुका तो तोड़ने का जरूरत नहीं क्योंकि पवित्र शास्त्र की अनुसार ही वो मरा वचन में लिखा है वचन संग्रह में लिखा है नॉट व्हेन अ बोन ऑफ योर बॉडी विल बी ब्रोकन
एक हड्डी भी आपका उसका शरीर से नहीं टूटा
कारण क्या है जिसको क्रूस में गाड़ते बहुत घंटे लगते मरने के लिए लेकिन रात होने के आगे कब्रिस्तान में लगा रहे तो सिपाही लोग सबके हड्डी तोड़ते लेकिन जब यीशु के हड्डी तोड़ने के लिए आया यीशु तो नहीं मर चुका है ये दोनों तो मरा नहीं तीनों का एक ही टाइम में क्रूस में चढ़ा लेकिन एक तो मरा दूसरा दोनों नहीं मरा क्योंकि ये पवित्र शास्त्र के अनुसार मर रहे हैं हे परमेश्वर आपके पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूं इसलिए आपने मुझे एक देह दिया है अब परमेश्वर की देह है यीशु का देह है कलीसिया कलीसिया कौन है यीशु का देह यीशु कौन है सिर है हम कौन है देह है पवित्र शास्त्र में आप और मेरे बारे में लिखा है वो पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको उद्धार दिया संसार में चलने के लिए नहीं संसारी तरीका में चलने के लिए इसका अनुसार जीने के लिए कि ये पवित्र स्थान पुस्तक में अगर सिर के बारे में लिखा है तो शरीर के बारे में लिखा है ए परमेश्वर तुमने मुझे एक देह दिया है सिर ने काम किया अब देह काम करना पड़ेगा ये विश्वास से ही होता विश्वास कहां से सुने सुने कहां से? परमेश्वर का वचन से। इसलिए परमेश्वर का वचन उठाना, सबसे मूल्य देना। भजन संग वचन संग्रह 138 के दो कल देखा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इधर, कल नहीं था, फिर देखेंगे। 138 एंड वर्स 2, साम्स 138 वर्स 2।
मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने
वजन को
अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया।
देख लो, उस सब ऊंचा यीशु नाम, हम सब गीत गाते हैं ना, यीशु का नाम सबसे ऊंचा, वो सत्य है, लेकिन वो नाम से ऊंचा एक वस्तु है, क्या है? उसकी वचन। इसलिए यीशु बोलेगा, अंत के दिन में सब आएगा मेरे पास, बहुत सारे लोग आएगा, प्रभु प्रभु आपके नाम में, आपके नाम में छुटकारा, आपके नाम में मिनिस्ट्री, आपके नाम में अच्छे काम किया, लेकिन मैं उससे बोलेंगे तुम्हें मुझको जानता ही नहीं। कारण क्या? वो सब उसके नाम में किया ना। प्रभु बोला तुम मेरे सामर्थ्य में किया, मेरे नाम में किया, लेकिन मेरे वजन से नहीं मिला तुम्हारा काम। विश्वास कहां से आते हैं? वजन से। उसके नाम में सामर्थ्य, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके नाम में, सामर्थ्य अभी भी नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, नाम में कर सकते, लेकिन प्रभु नहीं बोला मेरे नाम में सब कुछ करना, मेरे वजन के अनुसार मेरे नाम में करना, विश्वास से करना मेरे नाम में। विश्वास कहां से आते हैं? सुनने से। और सुनाई कहां से आते हैं? अब पूछ लो, अब हमारे पास शशि इधर है, जो है आसान पास शशि, वर्शिप लीड करने के लिए गाना सुनना, प्रैक्टिस करना आसान है ना, या फास्टिंग बढ़कर परमेश्वर से सुनना, आज के लिए कौन सा गीत चाहिए? कौन है आसान? कौन है आसान? वर्शिप लीडर, कोई वर्शिप लीडर से पूछ लो, कौन है आसान? अरे गीत सुन लो, लोग को देखो, लोग को कौन सा गीत पसंद है, कौन सा गीत के लिए लोग सब नाचेंगे, कौन सा गीत के लिए लोग सब हाथ उठाएंगे, अरे वो गीत सुन लो, नया नया धूम धूम का गीत सुन लो, वो लेकर आओ, प्रैक्टिस करो, गीत गाओ, आसान है ना। लेकिन आराधना हमारे बारे में नहीं, आराधना है उसके बारे में। वर्शिप इज नॉट अबाउट अस। अगर हम पूरा पसंद हो गया, बोला शशि पास्टर शशि आज का आराधना कितना तेज था, लेकिन आराधना हमारे बारे में नहीं था, आराधना उसके बारे में था। इसलिए वर्शिप लीडर से हम लोग क्या बोलते हैं? हे भाई एक मिनट, अगर कल रविवार है तो तुम कब गीत सुनते? सुनने के आगे परमेश्वर से एक बार पूछना, प्रभु रविवार के दिन आराधना हो गया आपके बारे में, आपकी आराधना होगा, आपका कौन सा गीत पसंद है? देख लो, हमारा ध्यान किसके ऊपर है? गीत के ऊपर, धुन के ऊपर, लोग के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, लेकिन परमेश्वर से सुनने के नहीं है। सुनना क्या है? कहां से आते हैं? परमेश्वर का वाक्य। कल भी देखा, वही हुआ दाविद का प्रॉब्लम, वाचा का संदूक अलग जगह में है, जेरूसलेम लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब जेरूसलेम लेकर आया, वजन के अनुसार नहीं जाकर पूछा, अरे वजन में क्या लिखा है, संदूक कैसे लेकर आना, नहीं पूछा, नहीं देखा, वजन में नहीं देखा, परमेश्वर के धर्म शास्त्र में नहीं देखा, उसने क्या किया, सांसारिक तरीका में अच्छा से किया, मन के सोच विचार सब ठीक है, लेकिन वजन से नहीं मिलता। 3000 सिपाही, नया बैलगाड़ी, उसमें रखकर आ रहे, लेकिन आते आते जो लेकर आए उस वो मरा, परमेश्वर का वाचा का बस संदूक का वो लेकर आने वाला वो तो मर गया रास्ते में, आराधना के बीच में लोग मर गया। क्यों ऐसे किया दाऊद? कारण क्या है? बहुत साल आगे जब एली पुरोहित था, उसके दो पुत्र होपनी और फिनास, इतना विकेट पीपल, गुलाम, दुष्ट व्यक्ति थे, जब फिलिस्ती इसराइल के साथ लड़ाई होते टाइम में, पहले लड़ाई में इसराइल हारा, दूसरा लड़ाई के लिए तैयार होते टाइम में, लोग बोला परमेश्वर का वाजा का संदूक लेकर आओ, हम जीतेंगे, परमेश्वर आ जाएगा तो हम जीतेंगे। जब वाजा का संदूक लेकर आया, इसराइली सब तेज था, लेकिन वो लड़ाई में उन लोग हारा, कितने लोग मरा वो दिन? 30,000 इसराइली सिपाही मरा वो दिन, और साथ वाचा का संदूक भी फिलिस्तीन लेकर आया, कितने लोग इधर मरा? 30,000। अब लेकर आते टाइम उसने कितने सिपाही को तेज किया? 30,000. उस दिन जब संदूक लेकर गया 30,000 मरा, आज हम जेरूसलम लेकर आ रहे 30,000 सिपाही आगे चलेंगे. देख लो उसका दिमाग कहां से आ रहे. सोच विचार सब ठीक है लेकिन वजन के साथ नहीं मिल रहे. और वो फिलिस्तीन लोग जब आजा का संदूक लेकर अपने मंदिर में रखा, उधर पूरा परमेश्वर का क्रोध आ रहे, लोग मर रहे, सब उभरे, इसको इधर से भेजना है, इधर से पढ़ाओ, इधर से पढ़ाओ, इसराइल में वापस दे उसको, परमेश्वर हमारे बीच में नहीं चाहिए. हम भी ये पहले सुसमाचार अच्छा से देना, ऐसे ऐसे देश में अच्छा से देना. सिर्फ यीशु, दूसरे के साथ मत मिलाओ. क्या हम अच्छे से नहीं बोलते? और बेचारे जो अन्य जाति के लोग क्या है, चंगाई के लिए आते और वो बाइबल लेकर अपने घर में इतने सारे मूर्ति है, मूर्ति के साथ इसको भी रखता और वो दिन से उसके जीवन में समस्या शुरू होता. कारण क्या है? हमें कारण. फिलिस्तीन लोग वाजा का संदूक लेकर अपने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर भी ग्रह, सब कुछ ग्रह, उधर समस्या भी शुरू हो गया. क्योंकि हमारा परमेश्वर असल परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उस दूसरे के साथ नहीं रख सकते. बोले निकालो निकालो निकालो, इधर से निकालो निकालो. उसने क्या किया, एक नया बैलगाड़ी में दो बैल को रखकर उसमें वाजा का संदूक लगाकर इसराइल भेजा. किसने भेजा? फिलिस्तीन. दाऊद ने क्या किया? 30,000 सिपाही, क्योंकि 30,000 सिपाही उधर मरा. और फिलिस्तीन तरीका में सब बाजा का संदूक. प्रभु वाला, किसने बोला तुम मेरा सामर्थ्य फिलिस्तीन संसारिक तरीका में लेकर आएगा? मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में. 3 महीने के बाद लेवी को बुलाकर बोले, तुम लेवी लोग क्या किया? वजन में लिखा है परमेश्वर का वाजा का संदूक कहां होना पड़ेगा?
लेवियों के
कंधों पर. जो परमेश्वर का पुरोहित है, जो परमेश्वर का पुजारी है, जो परमेश्वर के काम के लिए अलग किया लोग है, उसकी कंधों पर. नया नियम में हम कौन है? परमेश्वर का राजकीय, परमेश्वर को उपस्थिति कान हो पड़े. हाँ, राजकीय पुजारी हम कहां होगा? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे कंधों पर. हम कहां जाते हैं? अगर दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, संसार में, ऑफिस में, कलीसिया में, हम जहां जाते हैं हम क्या लेकर जाते हैं? परमेश्वर को उपस्थिति लेकर जाते हैं. क्योंकि परमेश्वर का वाजा का संदूक कहां है? पुजारी के कंधों पर है. वही परमेश्वर मानता, वो सब विश्वास से आता. वजन देख लिया, इस दाऊद ले मालूम पड़ा परमेश्वर माफी आपके तरीका में. और वजन में ऐसे लिखा, एक बात देख लो उधर वैसे लिखा है कैसे लेकर आया. दूसरा सामुएल के 6 में वो लेकर आ रहा है, अभी अभी दूसरा परमेश्वर का तरीका में लेकर आ रहा है. उधर क्या लिखा है?
6:13
लेकर आ रहा है.
जब यहोवा के संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला कोसा हुआ बछड़ा बलि कराया.
उसने क्या किया? जो संदूक दोस्त वो कैरिंग
जो उठा रहे थे,
कितना कदम?
6 कदम.
कितना कदम?
6 कदम.
1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6. 7वां कदम में क्या हो गया? एक बलिदान. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति लेकर अपने जीवन में लेकर, मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार, रविवार के दिन जब परमेश्वर की कलीसिया में आते, एक बलिदान होता. हम ये नहीं लेते संसार जाते टाइम में, इस कारण कलीसिया में आते टाइम में बलिदान भी नहीं है. 6 कदम. हमारा असली विश्वास का जीवन कलीसिया में नहीं, जब हम संसार में जाते टाइम में, वहां है हमारा विश्वास का जीवन. परमेश्वर का उपस्थिति लेकर हम जा रहे हैं, हमारे दफ्तर में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे शॉपिंग में, सब जगह में कौन लेकर जाते हैं? हम परमेश्वर को लेकर जाते हैं. वैसे 6 कदम लेकर जाते. हफ्ते में 7वां दिन हम जब रविवार को कलीसिया में आते हैं, हमारे जीवन से क्या आते हैं? एक बलिदान आते हैं. हिब्रायों 13:5 या 15
तुम्हारा स्वभाव
इसलिए हम उसके
द्वारा
कैसे कैसे बलिदान प्रभु मांगते हमसे?
हाँ,
परमेश्वर की उपस्थिति लेकर हफ्ते पूरे चलकर रविवार में आकर वर्शिप लीडर का जरूरत ही नहीं है। वर्शिप लीडर है या नहीं, गाना है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या आएगा मुख से? स्तुति का बलिदान आएगा। सातवां दिन ऑटोमेटिकली आएगा, गीत गाते आएगा कलीसिया में। इधर आने के लिए गीत के लिए शुरू नहीं, वेट नहीं करते, आते आते गीत गाकर आते, क्योंकि आज किसका दिन है? बलिदान का दिन है। वचन के क्या लिखा है?
स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए,
सर्वदा चढ़ाए गए। वो बलिदान परमेश्वर देख रहे, वो पर सर्वदा सात छह दिन बलिदान था, सातवां दिन भी बलिदान होगा होठों से परमेश्वर। सैक्रिफाइस ऑफर, ये है विश्वास का जीवन। ये सत्य तब देखकर हम अपने जीवन को तुलना करते परमेश्वर के वजन से और बोल रहे परमेश्वर माफी कर लो, मेरे जीवन आपके वजन के समान नहीं है, मुझे और क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, सत्य के समान बनाओ। आपके वजन क्या है? सत्य है, सत्य के वजन समान बनाओ। वो जब सत्य के समान लोग चलते हैं, वचन में लिखा है पौलोस और सिलास मिनिस्ट्री के बीच में एक छुटकारा के काम, अच्छे काम के वचन। एक लड़की को दुष्टात्मा पकड़ा था, उसको छुटकारा का एक काम किया, लेकिन लोग उस क्रोध हो गया, उस उन लोगों को पकड़कर नंगा कर मारपीट देकर रात को खुट्टा उसके पायर बांधकर जेल में डाला। वचन में लिखा है जेल में क्या उठ रहे? आराधना उठ रहे। आराधना बंद हो सकते है विश्वासी का? नहीं, नहीं बंद हो सकता, क्योंकि उसमें किसको लेकर चल रहे? परमेश्वर को उपस्थिति लेकर चल रहे, आराधना उठ रहे। वैसा होना पड़ेगा, दैट इज द लाइफ गॉड इज आस्किंग। सो व्हेन यू सी दैट लाइफ अप देयर,
वो जीवन है जो परमेश्वर मांग रहे हैं,
एंड वी आर हियर,
आप वो जीवन का स्तर को उतना ऊंचा में देख रहे हो,
डोंट,
जीवन का स्तर देख रहे इतना नीचा है,
डोंट गेट डिस्करेज्ड,
निरुत्साह मत होइए,
डोंट गेट
निराश मत होइए,
डोंट गेट डिस्करेज्ड,
निराश मत होइए।
से लॉर्ड,
कहिए प्रभु,
वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना के एक ही सत्र में क्या लिखा है? प्रभु ये सब सत्य है, ये सत्य कैसे मान सकते हो? मुझको सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर मसीह क्या लिखा है? परंतु अनुग्रह और
सच्चाई,
सिर्फ सच्चाई लेकर नहीं आया यीशु, क्या लेकर आया? उसके साथ साथ अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। प्रभु मैं सच्चाई मानता हूं, मन फिराता हूं, मैं वैसे नहीं, मैं ऐसे हूं, लेकिन वैसे होना चाहता हूं, अनुग्रह चाहिए मुझे मेरे जीवन में। कल के दिन ऑफिस जाते टाइम में परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। जाते टाइम में आपकी आशीष, आपके सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में हो, क्या आपके गवाही बन सकूं? आपके गवाही बन सकूं। सो लॉर्ड, अगर यीशु सिर्फ सच्चाई लेकर आते तो यीशु भी मूसा जैसे होना था। मूसा क्या लेकर आया? सिर्फ व्यवस्था, व्यवस्था के साथ अनुग्रह नहीं है, करो नहीं तो मरो। व्यवस्था क्या बोलते? हेलमेट लगाओ नहीं तो चालान भर दो, वो व्यवस्था कानून सहाय नहीं करते। रोड में हेलमेट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिसमैन हेलमेट खरीद कर नहीं देते, चालान देते। व्यवस्था क्या बोलते? करो नहीं मरो। इसलिए जो व्यवस्था देने वाले मूसा मिस्र देश में गया और व्यवस्था नहीं माना, उसने क्या किया? पानी को खून बनाया, लहू बनाया। जब अनुग्रह देने वाला यीशु जब काना में आया, पानी को क्या बनाया? दागरस बनाया। जब व्यवस्था देने वाले मूसा पर्वत से नीचे आया, लोग सब अंधकार में चल गया, परमेश्वर ने उससे बोला, लोग से बोलो अपने तलवार लेकर कैंप में जाकर जो जो परमेश्वर को छोड़कर अंधकार के काम के लिए मार लो, अपने परिवार होगा मार लो। वचन में लिखा है वो दिन कितने लोग मरा? 3000 लोग मरा। जब व्यवस्था आया वही दिन 3000 लोग व्यवस्था के विरुद्ध जाने के कारण मरा, लेकिन वचन में लिखा है जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया 3000 लोग बचा। वही है व्यवस्था और अनुग्रह के फर्क। व्यवस्था भी सत्य है, यीशु भी सत्य लेकर आया, लेकिन सिर्फ सत्य लेकर नहीं आया, सत्य के साथ अनुग्रह भी लेकर आया। इसलिए हम बोल रहे ये युग क्या है? अनुग्रह के युग है। लेकिन अनुग्रह किसके लिए चाहिए? सत्य मानने के लिए, सत्य पालन करने के लिए। कल भी बोला रोटी और सब्जी। सब्जी के लिए? रोटी खाने के लिए। जो रोटी खाते हैं उसको सब्जी चाहिए क्या? होटल में जाकर सब्जी खरीदते कोई नहीं। जब रोटी खरीदते उसके साथ साथ क्या आते? सब्जी आते। हम साउथ में बोलते जब डोसा आते उसके साथ साथ सांबर और चटनी आते। होटल में जाकर मुझे चटनी और सांबर दे, बोले अरे क्या डोसा करी तो चटनी सांबर फ्री। अरे तुम सत्य मान लो अनुग्रह फ्री। जो सत्य मानने चाहते हैं उसके जीवन में क्या आते? अनुग्रह आते। अनुग्रह मुफ्त है, वो खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन क्या खरीदना पड़ता? सत्य मूल चुकाना पड़ेगा। डोसा तो खरीदना पड़ेगा, चटनी फ्री है। रोटी तो खरीदना पड़ेगा, सब्जी फ्री है। किसके लिए मूल चुकाना पड़ेगा? सत्य के लिए मूल चुकाना पड़ेगा। सत्य के लिए मूल चुकाना पड़ेगा। आमेन। अब कितना मिनट का ब्रेक है? चाय का ब्रेक है। कितना मिनट का ब्रेक है? 15 मिनट का ब्रेक है। समय बहुत बहुमूल्य है। राजा कल भी बोला, राजा या भिखारी, सबको कितने घंटे मिलते एक दिन में? सबको। कितने ईसाई है, कितने देश में ईसाई, सबको एक ही पुस्तक दिया है परमेश्वर। सच है? सबको एक ही, पासवान को भी, लोग को भी एक ही बाइबल, सबको एक ही आत्मा। एक ही बाइबल, एक ही आत्मा और 24 घंटा। जब परमेश्वर के आगे खड़े होंगे, परमेश्वर बोला हिसाब दो, मेरा पुत्र और मेरे आत्मा से तुमने कैसे काम किया। सबको एक ही टाइम दिया था। इसलिए समय बहुमूल्य है। जब हम बोलते हैं चाय के लिए 15 मिनट, वो 16 नहीं होता, क्योंकि एक मिनट गया तो वो वापस नहीं मानते। अगर मुझको रोग आकर अगर चंगाई मिलते, छुटकारा मिलते, पैसा गए तो पैसा बना सकते, लेकिन एक चीज सी ये संसार में वापस नहीं मिलते, वो समय है। समय के ऊपर मूल्य रखो, वजन में लिखा है, बहुमूल्य है समय। वो जीवन में समय नहीं है, ये जीवन में समय है। इसलिए सबको एक नाम है। नाम के अर्थ क्या है? समय में इस व्यक्ति आया, समय में जिया, समय में मरा। परमेश्वर समय के बाहर है, इसके लिए उसका नाम नहीं है। जब परमेश्वर समय में आया उसका नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर को नाम नहीं है। जो जो समय में है, जिसको शुरू है उसके एक अंत भी है, जो जो शुरू है उसका नाम है, इसके स्वर्गदूत को भी नाम है, परमेश्वर को नाम नहीं है। जब परमेश्वर ये देह में आकर हमारे बीच में समय में आया, एक शुरुआत है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमेन। लेट्स क्विकली प्रे। फादर वी जस्ट थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग सेशन, एंड एज वी गो फॉर टी वी प्रे योर प्रेजेंस वी विल कैरी विथ यू लॉर्ड, एंड वी विल कम बैक इन योर नेम। थैंक यू फादर, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.